ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। सरकार ने नेपाल पुलिस के महानिरीक्षक पद पर ठाकुर प्रसाद गेवाली को किया नियुक्त। देश की आर्थिक उन्नति के लिए निजी सहकारी और सरोकार वालों के साथ सहकार्य करने के लिए सरकार तैयार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में हुआ प्रजातंत्र दिवस मूल समारोह समिति का गठन। और भारत की दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी विजयी। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिपरिषद की बैठक ने नेपाल प्रहरी के महानिरीक्षक पद में ठाकुर प्रसाद गेवाली को नियुक्त किया है। प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रहरी नायब महानिरीक्षक गेवाली को प्रहरी महानिरीक्षक में नियुक्त किया है। इसकी जानकारी गृह मंत्रालय स्रोत ने दी है। इसके साथ ही गेवाली नेपाल प्रहरी के 27वें महानिरीक्षक बने हैं। बता दें कि नवनियुक्त महानिरीक्षक इससे पहले प्रदेश नंबर 1 के प्रहरी प्रमुख रह चुके हैं। उनका कार्यकाल मात्र 5 महीनों तक के लिए है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि उद्योगी व्यवसायियों के लिए सरकार हर तरह का सहयोग करेगी। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय द्वारा आज काठमांडू में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि देश की आर्थिक उन्नति और विकास के लिए सरकार निजी सहकारी और सरोकार वालों आदि सभी से सहकार्य करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ओली ने सुशासन सहित की आर्थिक विकास में कानून की क्रियान्वयन और सुशासन प्रवर्धन में निजी क्षेत्र के सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। मौके पर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्य मंत्री मोतीलाल दुगड़ ने बताया कि व्यवसाय प्रवर्धन के लिए निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित कर उद्योगदर्ता की प्रक्रिया को सरल और सहज बनाया गया है। कार्यक्रम में विभिन्न व्यवसाय में संलग्न निर्यात प्रवर्धन में सहयोग पहुंचाने वाले विभिन्न 25 उद्योग व्यवसायियों को महत्वपूर्ण व्यवसाय व्यक्ति CIP से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में 70वां प्रजातंत्र दिवस मूल समारोह समिति का गठन किया गया है। गृह मंत्रालय में मूल समारोह समिति का गठन करने के लिए आज हुई बैठक ने प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर आगामी फागुन 6, 7 और 8 गते के लिए विभिन्न कार्यक्रम तय किए हैं। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातंत्र स्थापना के साथ ही नेपाल के इतिहास में अंधकार युग का अंत हुआ था। बैठक में संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बासुटा के संयोजकत्व में प्रचार प्रसार उपसमिति का गठन भी किया है। बैठक में मंत्रीगण, मुख्य सचिव, सचिव, भक्तपुर, ललितपुर और काठमांडू महानगर पालिका के प्रमुख, सुरक्षा निकाय के प्रमुखों लगायत की उपस्थिति थी। प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर आगामी फागुन 7 गते सैनिक मंच टूणीखेल में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस द्वारा 3 बार अवरोध की गई प्रतिनिधि सभा की बैठक आज नियमित रूप से संचालित हुई। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा द्वारा आज की बैठक की शुरुआत करते ही प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के सांसदों ने उठकर विरोध जताया था। सभामुख सापकोटा द्वारा समय दिए जाने के बाद कांग्रेस संसदीय दल की सचेतक पुष्पा भूषाल ने कहा कि अख्तियार ने भेदभाव के आधार पर विशेष अदालत में मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक निकाय को संतुलन में रहने की जरूरत है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक ने नेपाल इंजीनियरिंग परिषद पहला संशोधन विधेयक 2076 के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। बैठक में भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री बसंत कुमार निंगवांग ने राष्ट्र सभा में नेपाल इंजीनियरिंग परिषद पहला संशोधन विधेयक 2076 का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इसी तरह आज की बैठक में कानून, न्याय तथा मानवाधिकार समिति के सभापति कृष्ण भक्त पोखरेल ने प्रमाण दूसरा संशोधन विधेयक संबंधी समिति का प्रतिवेदन 2076, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति की सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदी ने बीज विजन दूसरा संशोधन विधेयक संबंधी समिति का प्रतिवेदन 2076 और राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के सभापति शशि श्रेष्ठ ने लोकसेवा आयोग विधेयक संबंधी समिति का प्रतिवेदन 2076 पेश किया। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक कल दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संघीय संसद की दोनों सदनों में पारित विभिन्न 6 विधेयकों का प्रमाणीकरण किया है। राष्ट्रपति भंडारी द्वारा आज प्रमाणीकरण किए गए विधेयकों में भूमि संबंधी 8वां संशोधन, प्रहरी समायोजन, नेपाल प्रहरी और प्रदेश प्रहरी कार्य संचालन, सुपरवेक्षण और समन्वय और राष्ट्रीय परिचय पत्र तथा पंजीकरण विधेयक शामिल हैं। इसी तरह औद्योगिक व्यवसाय और राजस्व चुहावट, अनुसंधान तथा नियंत्रण, पहला संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति भंडारी ने प्रमाणीकरण किया। इसकी जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता हरीश प्रसाद दहाल द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेखित है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ कनाडा की ऊपरी सदन सीनेट के सभामुख जॉर्ज जे फ्यूरी नेतृत्व के प्रतिनिधिमंडल ने आज शिष्टाचार मुलाकात की। मुलाकात के मौके पर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचंड भी शामिल थे। प्रधानमंत्री ओली और कनाडा के सीनेट के सभामुख जॉर्ज के बीच दोनों देशों के बीच के मैत्रीपूर्ण संबंध पर विचार विमर्श किया गया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं, समय है व्यापारिक विश्राम का।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। नेपाल प्रेस यूनियन रेडियो नेपाल शाखा का 4वां अधिवेशन आज सिंहदरबार में सम्पन्न हुआ। नेपाली कांग्रेस के नेता एवं पूर्व संचार मंत्री डॉ मिनेन्द्र रिजाल ने अधिवेशन का उद्घाटन करते हुए कहा कि रेडियो नेपाल को सार्वजनिक प्रसारण सेवा में रूपांतरण करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मौके पर रेडियो नेपाल के कार्यकारी निदेशक सुरेश कुमार कार्की ने कहा कि रेडियो नेपाल को सबल बनाने के लिए पत्रकार, व्यवस्थापन और सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। बता दें कि अधिवेशन ने अशोक कुमार मिश्र की अध्यक्षता में नई कार्य समिति का चयन किया है। काठमांडू के कोटेश्वर कलंकी सड़क खंड में अब तक सर्विस ट्रैक का निर्माण न हो पाने के कारण सड़क उपभोग में समस्या हो रही है। बता दें कि चीन सरकार की मुख्य और सहायक सहित 8 लेन की सड़क की दोनों ओर नेपाल की तरफ से 1 लेन निर्माण का समझौता हुआ था। कोटेश्वर, एकांतकुना, बल्खू आदि के विभिन्न स्थानों में जमीन की समस्या के कारण निर्माण न होने की जानकारी काठमांडू चक्रपथ सुधार योजना ने दी है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री गोकुल प्रसाद बासुरा ने कहा कि सूचना के हक का क्रियान्वयन करने के लिए सभी नागरिकों को अपना अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य के बारे में सोचने की जरूरत है। राष्ट्रीय सूचना आयोग द्वारा आज काठमांडू में आयोजित अंतरक्रिया कार्यक्रम में संचार मंत्री बासुरा ने ये बात कही थी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी भारी मत से विजयी हुई है। कुल 70 स्थानों के लिए हुई विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 स्थानों में और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने 8 स्थानों में जीत हासिल की है। बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने इससे पहले 67 स्थानों में जीत हासिल की थी। वहीं अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज सुबह एक सैन्य एकेडमी के बाहर आत्मघाती हमले में 5 लोगों की मौत हुई। मृतकों में 4 सैन्यकर्मी शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हमले में 6 लोग घायल भी हुए हैं। करीब 3 माह की शांति के बाद अफगानिस्तान की राजधानी में हुई इस आतंकी वारदात की अभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि हमलावर मार्शल फहीम सैन्य एकेडमी को निशाना बनाने आया था। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार आत्मघाती हमलावर पैदल था। जांच चौकी के पास एकेडमी के अंदर जा रहे एक वाहन से टकराकर उसने खुद को विस्फोट से उड़ा दिया। ये हमला ऐसे समय पर हुआ है जब अफगानिस्तान में संघर्ष विराम के लिए अमेरिका तालिबान के साथ बातचीत की कोशिश में लगा है। हमले की निंदा करते हुए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि ये मानवता के खिलाफ अपराध है। काबुल में इससे पहले गत नवंबर में आतंकी हमले में 12 लोगों की मौत हुई थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर से। समाचार सरकार ने नेपाल पुलिस के महानिरीक्षक पद पर ठाकुर प्रसाद गेवाले को किया नियुक्त। देश की आर्थिक उन्नति के लिए निजी सहकारी और सरोकार वालों के साथ सहकार्य करने के लिए सरकार तैयार, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में हुआ प्रजातंत्र दिवस मूल समारोह समिति का गठन और भारत की दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी विजयी। इसी के साथ हिंदी समाचार बुलेटिन से कल तक के लिए आगे दीजिए, सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।